है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, हमारी स्टूडियो के घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के संघ के साथ मैं हूं करिश्मा राय और मेरे साथ है मेरी सहयोगी अनुजा कुमार। अनुजा, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार, हेलो एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून करिश्मा। करिश्मा, व्हाइल एवरी डे इज अ गुड डे टू लव योर पेट्स, टुडे इज स्पेसिफिकली डेडिकेटेड टू सेलिब्रेटिंग द जॉय एनिमल कंपेनियंस ब्रिंग टू आवर लाइव्स एंड हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एनिमल अडॉप्शन। Yes, today is National Pet Day, celebrated annually on 11th of April to honor the joy pets bring, promote animal welfare and also encourage adoption. This day focuses on celebrating the bond with all the pets, from dogs and cats to smaller companions, and raising awareness for those in shelters, as many pets are surrendered or they need homes.
जी.
Research, including studies by the National Institutes of Health, shows that pets improve cardiovascular health, they reduce stress and lower blood pressure. Apart from this, we have a couple of other special days also today, which we will discuss in our Dateline section. But before that, to know what's going on around us, let's start with the news headlines. Karishma?
पश्चिम एशिया में स्थायी शांति समझौते के लिए इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता आज।
रिफ्यूजीज इन द कंट्री टू रिसीव फुल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड इन्फिल्ट्रेटर्स टू बी एक्सपेल्ड, असर्ट्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने आज समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की।
Electric cars priced up to 30 lakh rupees and registered in Delhi to be granted 100% exemption on road tax and registration fee till 2030.
Bharat mein digital bhuktan UPI ke 10 varsh pure.
And Ayush Shetty enters men's singles finals of Asia Badminton Championship in Zhejiang, China. And Karishma, it's now time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. And today we will talk on two different topics. First is World Parkinson's Day, and the other one is National Safe Motherhood Day.
Gee.
And to begin with, World Parkinson's Day is being observed today across the globe to raise awareness about Parkinson's disease, a kind of neurodegenerative disorder. The theme for this year is Bridge the Care Gap. The theme this year highlights the important healthcare challenge. While medical research continues to advance, many individuals still struggle with inconsistent access to specialists, rising treatment costs, and a lack of integrated support system. Bridging this gap means moving beyond the basic diagnosis to provide comprehensive care. And bridging this gap for patients and their families means this mission is more than just clinical treatment. It's about ensuring that every person living with Parkinson's disease has the resources and specialized care they need to maintain their quality of life.
जी, और पार्किंसन रोग दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करता है, फिर भी शुरुआती चरणों में कई मरीजों का निदान नहीं हो पाता। इस दिन का उद्देश्य लोगों को इस बीमारी के बारे में जागरूक करना, शीघ्र निदान को बढ़ावा देना और बेहतर देखभाल और अनुसंधान की वकालत करना है। इस दिन के प्रति जागरूकता लोगों को इस बीमारी को समझने में मदद करती है और उन्हें डॉक्टरों से जल्द परामर्श लेने के लिए प्रोत्साहित भी करती है।
Parkinson's disease occurs when nerve cells in the brain that produce dopamine gradually degenerate. Dopamine is essential for smooth and coordinated body movements. As dopamine levels decrease, patients develop characteristic symptoms such as tremors, stiffness, and slowed movement. The disease usually develops after the age of 50, although younger individuals can also be affected. It is the second most common neurodegenerative disorder after Alzheimer's disease, affecting millions ग्लोबली।
पार्किंसन रोग को समझने की यात्रा में 2 दशकों से भी अधिक का समय लगा है। चिकित्सा अनुसंधान ने धीरे धीरे इस जटिल तांत्रिक संबंधी विकार के कारणों, कार्यप्रणाली और उपचारों का पता लगाया है। इस अवसर पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली ने पार्किंसन रोग के बढ़ते प्रसार और इसके प्रभावी प्रबंधन की रणनीतियों की आवश्यकता पर भी बल दिया है।
And AIIMS will also organize several awareness programs, including a walkathon and public outreach events on the 18th and 19th of this month. And talking to Akashvani News, Professor and Head of the Department of Neurosurgery at AIIMS New Delhi, Dr. P. Saratchandra stressed that Parkinson's symptoms, which typically appear in the elderly, are now increasingly being observed among younger patients.
इन्फॉर्मेशन हम यही देना चाहते हैं क्योंकि पार्किंसन एक ऐसी बीमारी है जो बहुत लोग जानते नहीं है, जल्दी से ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं। तो ये इसलिए होता है क्योंकि ब्रेन के अंदर कुछ ऐसी कोशिकाएं हैं जो सिकुड़ते जाते हैं। इसका कारण हमें पता नहीं है क्यों है, जिसके वजह से मरीजों को सबसे पहले कंपन होती है, हाथ और पांव में अकड़न होती है, चलने में दिक्कत होती है, फिर डिमेंशिया मतलब भूल भी सकते हैं, मेमोरी लॉस भी हो सकता है। तो ये सारे एक सिम्टम कॉम्प्लेक्स को हम इसको पार्किंसन बोलते हैं। नॉर्मली हम बुजुर्ग के ग्रुप में देखते हैं, यूजुअली 50s 60s, लेकिन आजकल देख रहे हैं यंग ऑनसेट पार्किंसन भी काफी कॉमन हो रहा है। सो 30s में भी देख रहे हैं, हमने एक पेशेंट को देखा जो 25 में ही यंग ऑनसेट पार्किंसन हो गया था। बचाव देखिए 70-80% मेडिसिन से है, मेडिसिन आजकल काफी अच्छे काम करते हैं, लेकिन आपको समझना है मेडिसिन जो देते हैं ये बीमारी को बदल नहीं सकता है, बीमारी की वजह से जो लक्षण आती है इसको कंट्रोल कर सकता है मेडिसिन। बीमारी अपने आप धीरे धीरे बढ़ती जाती है, अब मेडिसिन कंट्रोल नहीं होता तो फिर हम इनकी ऑपरेशन भी कर सकते हैं। ऑपरेशन का नाम है डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, जहां पे मरीज को 2 तार डालते हैं दोनों तरफ और वो एक बैटरी को कनेक्ट कर, और ये बैटरी जो है इस तारों को करंट देती रहती है, जिसके वजह से उनको काफी कुछ इम्प्रूवमेंट होता है। इसके बाद मरीज 70-80-90% तक बिल्कुल अच्छी तरह काम कर सकता है।
In fact, one of the biggest challenges with Parkinson's disease is that its early symptoms are often subtle and easily overlooked. One should not ignore the early signs of Parkinson's disease. And if we talk about the early warning signs, a slight shaking in hands, fingers, or even the chin, especially when at rest, gives a symptom. This is one of the symptoms of the Parkinson's disease. Then we can also look into the simple tasks like buttoning a shirt or walking may take longer than usual. Stiffness in arms, legs, or neck that doesn't go away. When we start writing, writing becomes smaller and more cramped, a condition called micrographia. A reduced ability to show emotions, often called masked face, is also seen as the early symptom of Parkinson's. Frequent falls or difficulty in maintaining posture. These are few of the early signs which signal us towards Parkinson's. These symptoms may seem minor at first, but over time they can interfere with daily life. Observing World Parkinson's Disease Day helps people recognize these early signs and seek timely help, which is very important. And let's move on to the other topic now, National Safe Motherhood Day. Motherhood is one of the life's most transformative experiences, and India commemorates this profound journey with National Safe Motherhood Day on 11th of April each year. This day emphasizes the significance of safe maternal health throughout pregnancy, childbirth, and the postpartum phase. It shines a spotlight on the critical need for improved maternal care, particularly in rural regions where access to healthcare remains limited. This year, National Safe Motherhood Day advocates for collective action to make maternal health a priority and ensure no mother is left behind.
बिल्कुल, और इसके साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस की शुरुआत सबसे पहले साल 2003 में वाइट रिबन अलायंस इंडिया द्वारा की गई थी। इस दिन को महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी के सम्मान में चुना गया था, जो महिलाओं और बच्चों के कल्याण की एक प्रबल समर्थक थी। उनकी जयंती भारत में मातृ स्वास्थ्य की वकालत की निरंतर आवश्यकता की याद दिलाती है।
Pregnancy is a life-changing journey that demands utmost care and attention. Maternal health is crucial for the well-being of both the mother and the baby. Pregnancy-related complications can be prevented with timely medical care and regular checkups, which is why spreading awareness on the importance of maternal care is very essential. Providing better healthcare services and ensuring skilled assistance can significantly reduce the risk of maternal death.
और इसके साथ ही गर्भावस्था के दौरान होने वाली संभावित जटिलताओं जैसे कि अनीमिया, जेस्टेशनल डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर की शुरुआती पहचान करने में प्रसव पूर्व जांचें अहम भूमिका निभाती है. इन नियमित जांचों की मदद से स्वास्थ्य सेवा प्रदाता पोषण, व्यायाम और जीवन शैली में बदलावों के बारे में जरूरी सलाह दे पाते हैं जिससे गर्भावस्था के परिणाम बेहतर हो सकते हैं. गर्भावस्था और प्रसव ऐसे महत्वपूर्ण समय होते हैं जब चिकित्सा विशेषज्ञों का होना अत्यंत आवश्यक होता है. कुशल डॉक्टरों, दवाइयों और नर्सों की उपलब्धता से प्रसव के दौरान होने वाली परेशानियों का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है. सुरक्षित प्रसव मां और शिशु दोनों के लिए जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर साबित कर सकता है. यही कारण है कि दुनिया भर की मातृ स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों में इसे एक मुख्य केंद्र बिंदु माना जाता है.
Yes, Karishma, while physical health is paramount during pregnancy, emotional support is just as important. Having a support system of family, healthcare providers and community workers is vital for a healthy, safe pregnancy. Communities can raise awareness on maternal health topics such as breastfeeding, infant care and postpartum recovery. Maternal deaths though they are preventable, remain an issue in many regions. The primary causes of death include complications that could have been managed with timely medical intervention. National Safe Motherhood Day this year focuses on improving access to healthcare, increasing awareness, and ensuring skilled care is available to every mother during pregnancy and childbirth.
अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है.
एंड इन दिस सेगमेंट लेट्स फर्स्ट गो टू गुवाहाटी. बोहाग बिहू इज हियर ब्रिंगिंग विद इट द जॉय ऑफ स्प्रिंग, न्यू बिगिनिंग्स एंड वाइब्रेंट सेलिब्रेशंस अक्रॉस असम. द रिदम्स ऑफ ढोल एंड पीपा एको द स्पिरिट ऑफ टुगेदरनेस एंड कल्चरल प्राइड. एमिड दिस फेस्टिव मूड द असमी बोहागी मेला बिगिंस टुडे एट लालफील्ड इन हाफलोंग. We have more on this from our correspondent.
In a vibrant celebration of Assam's cultural spirit, the three-day Assami Bohagi Mela 2026 begins today at Haflong in Dima Hasaw district, bringing with it the color, rhythms and flavor of Bohag Bihu, the season of renewal. The event will continue till the 13th of this month, drawing people from across the region to experience the essence of Rongali Bihu in the serene hills of Dima Hasaw. The event is being organized by the District Rural Development Agency and the Assam State Rural Livelihood Mission in collaboration with the North Kachar Hill Autonomous Council. It stands as a tribute to the rich and diverse traditions of the state, with the fairgrounds coming alive with the vibrant folk music, energetic Bihu dances and indigenous cultural performances. A major highlight of the Mela is its emphasis on grassroots entrepreneurship. Stalls set up by the self-help groups showcases a wide array of locally made products, including traditional cuisines, fresh fruit juices, pickles, and handmade items. This platform not only celebrates local craftsmanship, but also provides rural artisans and producers an opportunity to connect with a broader market and strengthen its livelihood. The Mela also plays a significant role in promoting community-based economic activities in the district by encouraging self-help group-led enterprises and local innovation. With Monsoon Singh in Dima Hasaw district, Rakesh Tole, Akashwani News, Guwahati.
बढ़ते आगे बात पश्चिम बंगाल की कर लेते हैं. पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले चुनाव आयोग फेक न्यूज, प्रोपेगेंडा और आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर रोक लगाने के लिए अपनी निगरानी व्यवस्था को मजबूत कर रहा है. इस पहल के तहत पश्चिम बंगाल और चुनाव वाले अन्य राज्यों में 24 घंटे काम करने वाले एक विशेष मीडिया निगरानी केंद्र स्थापित किया जा रहा है. एक रिपोर्ट.
Ahead of the Election Commission is strengthening its surveillance mechanism to curb fake news, propaganda and violations of the Model Code of Conduct. As part of this initiative, a dedicated 24-hour media monitoring center is being set up in West Bengal along with other poll-bound states. The commission has sent a communication to the Chief Electoral Officer, CEO, of the state in this regard. According to the letter, this dedicated 24/7 media monitoring centers will be established to quickly identify violations related to elections and take real-time action. The centers will monitor both television news channels and social media platforms. As per the instructions, a separate monitoring room must be created in the CEO's office, equipped with multiple screens to continuously track at least 10 major news channels. Round-the-clock surveillance will be ensured through shift-based deployment of personnel. Additionally, a separate desk with proper internet connectivity must be set up for monitoring social media. In case of any electoral violation, it will be mandatory to immediately inform higher authorities and prepare daily reports. The Commission has also directed the creation of dedicated WhatsApp groups for faster information sharing. Meanwhile, the Office of the Chief Electoral Officer has convened a video conference with district-level officials recently to discuss issues related to SWIFT, media monitoring and overall preparedness. Sushmita Mondol, Akashvani, Kolkata.
तमिलनाडु का मध्य जिला तिरुचिरापल्ली, जिसे मंदिरों का शहर भी कहा जाता है, 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह से जुट गया है। इन तैयारियों में विशेष जागरूकता कार्यक्रमों पर खास बल दिया जा रहा है। हमारे तिरुचिरापल्ली संवाददाता से और जानकारी के लिए सुनते हैं ये रिपोर्ट।
Elections play a vital role in a democratic country like India, where citizens have the power to elect their representatives. The Election Commission of India ensures that elections are conducted in a free, fair and transparent manner. As the 2026 Assembly elections approach in Tamil Nadu, the Commission has launched several programs to create awareness among voters. One of the major initiatives is the SWEEP, Systematic Voters Education and Electoral Participation Program, which focuses on increasing voter registration and participation. Through rallies, campaigns and educational activities in schools, colleges, citizens, especially young and the first-time voters, are encouraged to understand the importance of voting. The Election Commission has also introduced digital services such as online voter registration, correction of details and mobile applications like the voter helpline to make the process simple and accessible. These technological efforts help reduce confusion and improve participation. Special attention is given to inclusive elections by supporting persons with disabilities, senior citizens, women and rural communities. Awareness programs also educate voters about ethical practices, including rejecting bribery and following the model code of conduct. The initiatives taken by Election Commission of India for the 2026 Tamil Nadu Assembly elections aim to build an informed and responsible electorate. Shanti Ramesh for Parikrama from Akashvani, Tiruchirappalli.
और श्रोताओं, अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल। सबसे पहले बात बैडमिंटन की। आयुष शेट्टी बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने सेमीफाइनल में मौजूदा चैंपियन कुंडलावुत विति दर्शन को हराकर फाइनल में जगह बनाई। अब फाइनल में आयुष का मुकाबला एक अन्य सेमीफाइनल के विजेता से होगा। यह सेमीफाइनल चीनी ताइपे की चाउ टियन चेन और चीन की शी यू की के बीच होना है।
And if we talk about the IPL cricket, put into bat, Sunrisers Hyderabad were 175 for 3 in 14.3 overs against Punjab Kings in Mullapur in New Chandigarh when reports last came in. In another match, Chennai Super Kings will take on Delhi Capitals in Chennai this evening.
और इसके साथ ही भारत की मीनाक्षी गोयल ने किर्गिस्तान के बिश्केक में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में मीनाक्षी गोयल ने दक्षिण कोरिया की सियोंग यंग पार्क को 4-2 से हराया। मोनिका ने 65 किलोग्राम और हर्षिता ने 72 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। और अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
In today's episode, we remember the great social reformer Mahatma Jyotirao Phule, who was born on the 11th of April 1827. He worked towards the eradication of the caste system and educating women. He and his wife Savitri Bai Phule were pioneers of women education in India.
Jyotiba founded Satya Shodhak Samaj in 1873 in Pune to fight for attaining equal rights for people
from so-called lower castes and to educate them. The ideals of human well-being, happiness, unity, equality and easy religious principles and rituals form the philosophy of the Samaj. Jyotiba said,
Mere aap se vinti hai ki aap mane Ishwar ek hai aur sare manushya uske bacche hain. Mere aap se prarthana hai ki aap apne aur Ishwar ke beech mein kisi ko bichwai na mane.
The members used to visit villages and perform jalsas to spread the messages of social reformation.
Phule is regarded as one of the most important figures in the social reform movement in the country. He was bestowed with the honorific title Mahatma by social activist Vitthal Rao Krishnaji Bandekar in 1888. We salute the great Indian.
We also remember freedom activist Kasturba Gandhi, who was born on the 11th of April, 1869, fondly called as Ba by her husband Mahatma Gandhi. She, in Gandhiji's own words, was the epitome of strength, from whom he learned about the practice of Ahimsa, the non-violence. Gandhiji wrote,
If anything, Kasturba stood above me, but for her unfailing cooperation, I might have been in the abyss. She stood by me in all my political fights and never hesitated to take the plunge. In the current sense of word, she was uneducated. But to my mind, she was a model of true education. She was a devoted Vaishnava, but she had obliterated all feelings of caste from her mind. She personified the ideal of which Narasimha Mehta has sung in Vaishnav Jan Hymn.
On the evening of 22nd February 1944, Kasturba breathed her last at the Aga Khan Palace, where she was detained with Gandhiji. We salute the great Indian.
We also remember martyr Faulad Singh, who took part in the First War of Indian Independence in 1857. A resident of Khandesh, Maharashtra, Faulad Singh took part in attacking the British establishments and seizing their treasuries at a number of places.
He took part in a battle on 11th of April 1858, where he was killed by the company troops in the course of fierce fighting. We salute the great son of the soil.
We also remember independence activist Kapil Deo Singh, a resident of Muzaffarpur, Bihar, who took part in the Quit India movement in 1942.
Kapil Deo was arrested and he died on 11th of April 1944 in prisoner's ward of Patna Hospital. We salute the great martyr.
Moving on, we also pay tribute to Faneeshwar Nath Renu, who was a Hindi journalist and novelist best remembered for his Mela Aanchal in the year 1954, which introduced regional writing to Hindi fiction, bringing the authentic voices, dialects and cultural nuances of rural India, specifically the Mithila region of Bihar, into mainstream Hindi literature. He was one of the most influential Hindi writers of the post-independence era. He participated in the Quit India movement of 1942 as well. And in 1975, he was awarded the Padma Shri, but he famously returned this award to protest the proclamation of internal emergency by the then Indian government. While his debut novel, Mela Aanchal, is often celebrated as a milestone in Hindi literature, its significance lies not just in its literary achievement, but also in its moral clarity. Renu gave voice to the margins and remembered the forgotten, crafting a new style in literature. Of course, his short story, Mare Gaye Gulfam, was adapted into a film, Teesri Kasam, by Basu Bhattacharya. And in 1966, for which he also wrote the acclaimed dialogues. And later, his short story, Punchlight, was also made into a TV short film. We have for you a dialogue from the movie Teesri Kasam, which is always noted for their rustic charm, capturing the authentic flavor of rural Bihar.
आप ये काम छोड़ दीजिए, ये नौटंकी का काम, लोग आपको बुरा समझते हैं।
तो क्या हुआ, मैं बुरी बन तो नहीं गई?
फिर भी लोग तरह तरह की बातें करते हैं।
नौटंकी में काम नहीं करूंगी तो खाऊंगी क्या?
क्यों, आप सर्कस कंपनी में काम कीजिए। हाँ जी, वहाँ आपको कोई बुरा नहीं कहेगा, वहाँ बाघ को ना चाहिएगा।
बाघ?
जी हाँ, बाघ के पास आने की हिम्मत किसको होगी?
और इसके साथ ही आज महान साहित्यकार विष्णु प्रभाकर की पुण्यतिथि है। साल 2009 में आज ही के दिन उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा था, लेकिन उनका साहित्य आज भी जीवित है। विष्णु प्रभाकर हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार, नाटककार और कहानीकार थे। उन्होंने अपनी रचनाओं से समाज की सच्चाइयों, मानवीय मूल्यों और जीवन के संघर्ष को बहुत ही सरल और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया था। उनकी प्रसिद्ध कृति आवारा मसीहा आज भी पाठकों के बीच बेहद लोकप्रिय है और साहित्य जगत में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अपने उत्कृष्ट साहित्यिक योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था।
एंड ही वन द प्रेस्टिजियस साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1993 फॉर हिज नॉवल अर्ध नारीश्वर। Today we also pay tribute to Kamal Ranadiv, who was a pioneering Indian biomedical scientist who founded India's first tissue culture lab and advanced cancer, immunology and women-led science. Her scientific focus on cancer, tumor viruses, hormones and immunology laid a strong experimental foundation for modern oncology research. She also co-founded the Indian Women Scientists Association, encouraging women's participation in science. Her career combined laboratory excellence, public health research, and national scientific leadership. Her studies clarified links between hormones, tumor viruses, and cancers such as leukemia, breast cancer, and esophageal cancer using animal models and cellular analysis. Her foundational work on leprosy-related bacteria contributed to the scientific basis for leprosy vaccine development and strengthened understanding of immune responses.
और इसके साथ ही आज हम भारत के प्रसिद्ध चित्रकार जामिनी रॉय को याद कर रहे हैं, जिनकी आज जयंती है। और जामिनी राय भारतीय कला जगत के एक ऐसे महान कलाकार थे जिन्होंने अपनी पेंटिंग से भारतीय संस्कृति और परंपरा को बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाया। उनके पेंटिंग की खास बात यह थी कि उन्होंने पश्चिमी शैली को छोड़कर भारतीय लोक कला को अपनाया और उसे एक नई पहचान दी। उनकी पेंटिंग्स में सरल रेखाएं, गहरे रंग और साफ भाव नजर आते थे जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करते थे। उनके योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था।
And today we also pay tribute to Kundan Lal Sehgal, often known as K.L. Sehgal. It is his birth anniversary today, though his fans would popularly know him as Kundan Lal Sehgal. Famous songs are in his initial days of his career. He used the name Sehgal Kashmiri for the first three films as an actor and singer. An early dropout from school, Sehgal started earning money as a time clerk in the railways and later joined Remington Typewriter Company as a salesman. And during this period, he had to tour several places all over the country when he came across various people attached to the music industry. In one such interaction, he came across the famous classical musician and music director, Sri Harish Chandra Bali, who eventually introduced him to R.C. Bural at Calcutta Radio Station. Here at the Calcutta Radio Station, he came across Pankaj Malik, the person who actually helped him in steering his career. He introduced Sehgal to Hindustan Record. K.L. Sehgal, throughout his career, recorded almost every song for Hindustan Record. Famous songs by Kundan Sehgal are many, but right now we have a very famous and melodious song in his voice.
कुंदनलाल सहगल ने कई यादगार फिल्मों में काम किया जिनमें देवदास खास तौर पर बहुत प्रसिद्ध रही। इस फिल्म में उनके अभिनय और गायन दोनों को खूब सराहा गया। इसके अलावा उनके गाए हुए गाने जब दिल ही टूट गया आज भी संगीत प्रेमियों के बीच बेहद लोकप्रिय है।
जब दिल ही टूट गया हम जी के क्या करेंगे, हम जी के क्या करेंगे, जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया।
के साथ ही आज सोमदत्त बट्टू की भी जयंती है। सोमदत्त बट्टू हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के जाने माने गायक हैं, जो पटियाला घराने से जुड़े हुए थे। उनके गायन में परंपरा की गहराई और सुरों की मिठास साफ सुनाई देती है। उन्होंने अपने संगीत के जरिए शास्त्रीय गायन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और संगीत प्रेमियों के दिलों में खास जगह बनाई। उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें हिमाचल गौरव से भी सम्मानित किया गया, जो उनके संगीत सफर की एक बड़ी उपलब्धि रही है।
And today marks the birth anniversary of Naveen Nishal, a charismatic actor who left an indelible mark on Indian cinema. Naveen Nishal, known for his effortless charm and screen presence, carved a successful path in Bollywood for over four decades.
और श्रोताओं, अब समय हो चला है परिक्रमा के संग को यहीं समाप्त करने का, तो हमें अनुमति दीजिए।
नमस्कार।